ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वाग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमयोम विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामीनिति नामिने। नमस्ते स्वारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आराध्य भगवान ब्रजेश तनयस्तद्धाम वृंदावनम रम्याक्वाचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण यकल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महां श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो नोपरः। श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे बालपीयादनुग्रहात् तरेन्नानामतग्राहो व्याप्तं सिद्धांत सागरम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनिति नामिने। नमाचार्य पादाय नितय कृपाप्रदायिने गौरकथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे मूकं करति वाचालं पंगुलंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुदिनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो पहले तो हम उपस्थित सभी भक्तों से बहुत वज्रस्थ अग्रज भक्त सब भी इधर बैठे हुए हैं, सबसे हम उनका कृपा याचना करते हैं इस पवित्र दामोदर महीना में श्रीधाम वृंदावन में श्रीमान सत्यव्रत मुनि द्वारा किया गया ये दामोदर अष्टक के ऊपर कुछ चर्चा करने के लिए। तो पहले तो मुझे कल बताया गया था संडे को पहला श्लोक करने के लिए, तो बाद में पूज्यपाद सार्वभौम प्रभु उनका स्केड्यूल में टाइम के लिए कल वो आए, तो मैं आज सुन रहा था उनका। कल मैं अटेंड नहीं कर पाया, इधर वृंदावन गोवर्धन परिक्रमा में था, तो उनका क्लास सुन रहा था रिकॉर्डिंग। पहला श्लोक के ऊपर प्रभु जी चर्चा कर रहे थे, तो ये सुनने के बाद मुझे लगा अगर मैं ये बोलता कल तो फिर बहुत कुछ मिस हो जाते सबको। प्रभु जी इतना सुंदर इतना मधुरता से प्रभु ये चर्चा कर रहे थे। तो आज हम दूसरी श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो आज बहुलाष्टमी का दिन है, पवित्र तिथि, और आज ही श्री राधा कुंड का आविर्भाव दिवस है, तो इसके बारे में बहुत कुछ चर्चा किया जा सकते हैं। लेकिन आज हमारा चर्चा का विषय यह है दामोदर अष्टकम का दूसरी वर्ष दूसरी श्लोक है, और आज बहुत लोग जाके नहाएंगे स्नान करेंगे राधा कुंड में और राधा रानी की कृपा लेंगे। तो दामोदर अष्टकम ऐसे हरिभक्ति विलास में भी कहा गया स्पेसिफिकली सुनिर्दिष्ट रूप में कि इस दामोदर महीना में हमें ये जो ऊर्जा व्रत है पालन करते हैं भक्त लोग, और इस दामोदर अष्टकम जो सत्यव्रत मुनि उन्होंने रचना किया है वो उसका पाठ करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, और इतना सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं वो। काल सर्वम प्रभु बता रहे थे कि जो दास्य रस का भक्त है वो ज्यादातर खास कर भगवान का चरण कमल में ध्यान करते हैं, और जो बात्सल्य और मधुर माधुर्य रस का भक्त है वो भगवान का मुखारविंद में ध्यान करते हैं। तो इस दामोदर अष्टकम में भी खास करके भगवान का मुखारविंद में ध्यान किया गया है। इदंते मुखाम भोज। तो पहले श्लोक में हमने सुने कि सत्यव्रत मुनि कहते हैं दामोदर अष्टकम नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, और श्री सनातन गोस्वामी ने दिग्दर्शन टीका लिखे है इस दामोदर अष्टकम के ऊपर, और काल प्रभु जी चर्चा कर रहे थे। सो चर्चा कर रहे थे कैसे इस दामोदर अष्टकम का पहला वर्ष में, पहले श्लोक में भगवान का तत्व विशेष, उनका लीला विशेष, उनका सौंदर्य विशेष, रूप विशेष के बारे में, गुण विशेष के बारे में कहा गया है, परिवार विशेष के बारे में कहा गया है। और इस श्लोक में, दूसरे श्लोक में भगवान का लीला विशेष को और ज्यादा विस्तार किया गया है, और तीसरे श्लोक जब हम काल पढ़ेंगे सुनेंगे वह भगवान के गुण विशेष के बारे में चर्चा किया गया है। तो इस श्लोक में भगवान का लीला विशेष, रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्म मृजंतम, हम पहले गाए है ये। तो रुदंतम, भगवान श्री कृष्ण रो रहे हैं। पहले तो हम ये देखेंगे ये जो अत्यंत सुंदर श्लोक और दामोदर अष्टकम में क्या वर्णन किया हुआ है, मतलब सब कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी, विरोधात्मक कहा जाता है उसको, कि परमेश्वर भगवान परम ब्रह्म जो सबका स्वामी है, सबका स्रोत है, सभी अवतारों का भी स्रोत है, वो यहां पे रो रहे हैं और भयभीत हो गए हैं। इसलिए भगवान का बहुत सारे शक्तियां है, अनंत कोटि शक्ति भगवान का कहा जाता है, अनंत कोटि नाम भी है, कृपा शक्ति, लीला शक्ति, स्वेच्छावर्तिनी शक्ति, और एक शक्ति का नाम कहा गया है श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, उसका नाम है विरोध भंजिका शक्ति। विरोध भंजिका मतलब क्या है, जो विरोधात्मक तत्व का प्रकट करते हैं वो भगवान, उनका जन्म नहीं है फिर भी जन्म ले लेते हैं। कर्माणि अनिहस्य भव अभवस्यते, खुद का कोई कर्म नहीं फिर भी कर्म करते हैं। अभव उनका जन्म है ही नहीं फिर भी जन्म ले लेते हैं। सब लोगों का इस संसार में इस बात के लिए, इस जो चीज के लिए को लेके संशय है, संदेह है, वो कृष्ण कैसे भगवान हो सकते हैं, जन्म लेते हैं, भगवान कैसे जन्म लेते हैं। तो वो जन्म लिया तो भगवान नहीं, हाँ हो सकते हैं कोई अच्छा मनुष्य था, अच्छा महापुरुष कह सकते हैं उनको, असीम शक्तिमान पुरुष कह सकते हैं। एक आदमी तो ऐसे भी कह रहे थे कि कृष्ण ऐसा एक व्यक्तित्व है या व्यक्तित्व थे, और उन्होंने ऐसा जीवन यात्रा किया या फिर ऐसा उनका जीवन को मजा लिया जैसे हमें सबको लेना चाहिए, ऐसा भी कह रहा था वो। तो भगवान कर्माणि अनिहस्य भव अभवस्यते दुर्गाश्रय थारी भयात पलायनम, और उनको देखकर स्वयं काल भी भयभीत हो जाते हैं, और वो भगवान स्वयं क्या करते हैं, शत्रु को देखकर वो भाग जाते हैं। रणछोड़ भगवान की वो रण छोड़कर चला जाते हैं, और सब सोचते देखो डर के भाग गया। दुर्गाश्रय थारी भयात पलायनम कालात्मनो यम प्रमदायुताश्रमः स्वात्मनृते, वो स्वात्मनृते कहा गया उनको, आत्माराम आप्तकाम कहा गया उनको, और उनको देखकर स्वयं उनको, भगवान का और एक नाम है मदन मोहन, हम जानते हैं मदन मोहन का मतलब क्या है, जो मदन देव को भी मोहित कर देते हैं। और वो भगवान स्वात्मनृते जो कहा, जिनको कहा गया वो प्रमदायुताश्रम गोपियों के साथ या फिर रानियों के साथ लीला कर रहे हैं, लगता है कि ये जो क्या कहते हैं स्त्रैना हैंडपेक्ट जो हस्बैंड होते हैं, स्त्रैना कहा जाते हैं, जो पारिजात लीला में हम सुनते हैं भागवतम में, भगवान गए थे स्वर्गलोक में पारिजात लाने के लिए, तो इंद्र भगवान को गाली दे रहा था कि ये स्त्रैना है, उनका पत्नी ने कहा कि मुझे पारिजात लेके दो और वो आ गए इधर पारिजात लेने के लिए, लेकिन वो खुद त्रैन था इंद्र। तो ऐसा ही भगवान का लीला, और कालात्मन प्रमदायुताश्रम स्वात्मन रिद्यति धीर विदाम। ऐसे लीला को देखकर जो धी जो बुद्धिमान व्यक्ति है, सज्जन है, पंडित विद्वान है, वो भी विभ्रांत हो जाता है, तो फिर आम आदमी का क्या कहना है। तो ऐसा लीला देखते हैं भगवान के हम इस दामोदर अष्टकम में, दामोदर लीला में भी कहते हैं कि जब वराहदेव आए थे तब उनका जो आकृति इतना विशाल था कि मानो के पूरा ब्रह्मांड का जितना जल है, पानी है, वो उनका एक रोम कूप में आ जाएगा, इतना विशाल था वराहदेव। और वो वराहदेव उनका जो स्रोत है स्वयं रूप है कृष्ण, वो जब आए इधर दामोदर, उनको क्या किया मैया यशोदा ने एक बाल्टी पानी लिया, उनके ऊपर डाल दिया, चलो नहाना हो गया, सबका स्रोत है और इनका ये हाल है। इधर रुदंतम रो रहे हैं, इधर मुहुर नेत्रम बार बार, और क्या कर रहे बार, मुहुर नेत्रम युग्मम मृजंतम करांभ युग्मेन, करांभ यजु मतलब दोनों हाथों से मुहुर नेत्रम युग्मम मृजंतम, दोनों आंखें को वो मसल रहे थे, युग्मम मृजंतम रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्मम मृजंतम करांभ युग्मेन, उनका जो हाथ है वो पद्म फूल की तरह है, हस्त पद्म कहा जाते हैं, कर पद्म कहा जाते हैं। हालांकि भगवान का जो सौंदर्यता है या फिर उनका जो रूप है इस भौतिक जगत का जगत से परे है, मतलब इस भौतिक जगत में हमें कोई आशा भी या फिर हम समझ नहीं सकते भगवान का रूप कैसा है, इतना मधुर रूप है। लेकिन हमारा समझने के लिए सिर्फ भागवत में कहा गया ठीक है, पद्म नेत्र पद्म बाहु पद्मज कहा गया है भगवान को, के क्योंकि इस जगत में पद्म फूल जो होते हैं कमल सबसे सुंदर है, मतलब सुंदरता के बारे में अगर हम चर्चा करें तो पहले ही कमल के नाम आएगा, तो इसलिए सिर्फ एक तुलना किया गया है, हमें भगवान के साथ तुलना किया गया है भगवान का सौंदर्य। कराम भोजो युग्मेन सात अंक नेत्रम स्व आतंक नेत्रम, उनका जो आंख थे आंखें वो आतंक भयभीत थे, आतंक मतलब समझते हैं हमें भयभीत थे, और स आतंक उसके सामने और एक उपसर्ग लगा दिया गया, संस्कृत में प्रीफिक्स जो होते हैं उपसर्ग होते हैं वो क्यों लगाते हैं, अलग अलग अर्थ होते हैं, तो ज्यादातर क्यों लगाते हैं उसको जोर देने के लिए, स आतंक इतना भयभीत हो गए थे, जैसे मान लीजिए मत्त, मत्त का मतलब क्या है, पागल हो गया, अमत्त मत्त हस्ती कहा जाते हैं, पागल हो गया, लेकिन ऐसे कहा गया प्रमत्या और ज्यादा पागल हो गया, और उसके अगर पहले फिर लगा सुप्रमत्या और भी ज्यादा मतलब एकदम गया पागल हो गया। भक्तिविनोद ठाकुर एक भजन में कहते हैं भूलिया वैकुंठ तत्व माया भोगे सुप्रमत्य आमी आमी कोरिया वेराई, भक्तिविनोद ठाकुर एक भजन में कहते हैं ये हमारा हाल बताते हैं इस जगत में, भूलिया वैकुंठ तत्व, हम वैकुंठ के भगवत धाम के वासी है, भगवान का दास है हम, जो वैकुंठ तत्व है वो भूल गए हम, भूलकर इस जगत में आके क्या कर रहे हम, माया भोगे सुप्रमत्त, इस जगत में माया को भोग करने के लिए हम सुप्रमत्य है, एकदम मतलब पागल हो गया, प्रमत्य मतलब और पागल हो गया, और सुप्रमत्त मतलब पूछा मत एकदम गया, आमी आमी करिया वेराई। हम इस जगत में सिर्फ मैं और मेरा इस भाव को लेकर हम फंस गए हैं, तो इसे कहा गया है सात अंक नेत्रम, इतना भयभीत थे भगवान। तो अभी हम सोच सकते हैं ठीक है ये तो भगवान है वो कैसे भयभीत होंगे, लगते हैं भगवान तो यह लीला कर रहे हैं ना, तो भगवान नाटक कर रहे हैं भयभीत होने का, वो तो भगवान भयभीत हो ही नहीं सकते। लेकिन आचार्यों ने कहते हैं कि नहीं, भगवान असल में भयभीत हो गए थे, डर गए थे भगवान, नहीं मैया यशोदा आएंगे और मुझे अभी वो मुझे मारेंगी, वो डर गए थे भगवान श्री कृष्ण। तो कैसे समझ सकते हैं हम, इसलिए कहा गया खिद्यति धीर विदामः, जो बुद्धिमान विद्वान व्यक्ति भी विभ्रांत हो जाते हैं, हमें क्या हम क्या करें।
इसलिए आचार्य कहते हैं कि भगवान का जो ये जो स्वयं रूप या फिर उनका जो सर्वेश्वरत्व परमेश्वरत्व जो है, सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमत्व है, हाँ वो मतलब सबसे परे है, असमूर्ध है भगवान, उनके ऊपर उनके नीचे कोई नहीं, वो सबसे मतलब उनके ऊपर कोई नहीं, वो सबसे ऊपर है, सबसे शक्तिमान है, उनका समन भी कोई नहीं, ये ठीक है। लेकिन ये जो भगवान का सर्वशक्ति है ये तो ठीक है, इच्छा शक्ति है भगवान का, लेकिन भगवान का और एक सबसे कहा गया शक्तिमान जो शक्ति है लीला शक्ति। जब भगवान लीला करने आते हैं तब उनका लीला शक्ति बाकी सारे शक्तियों को वो छाप के चला जाते, ऊपर चला जाते ओवरकम करके, और लीला शक्ति सबसे शक्ति शक्तिशाली हो जाते, तब तब बाकी शक्ति इतना उतना काम नहीं करता है। तो इस दामोदर अष्टक में दामोदर में देखते हैं लीला शक्ति और कृपा शक्ति देख का वर्णन देखते हैं हम। तो भगवान वैसे क्या किए, उनका लीला शक्ति के द्वारा वो भयभीत हो गए थे, तो इसलिए भगवान जब जो लीला करते हैं उस लीला के अंदर एकदम मतलब तन्मय हो जाते हैं, रम जाते हैं भगवान, भूल जाते हैं बाकी सब कुछ के मैं भगवान हूं। जब वो कान्हा कृष्ण बन के आते हैं वृंदावन में, वो चोरी करते हैं मक्खन चोर, तो वैसे करते हैं सबसे प्रसिद्ध चोर है, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चतुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्र्य गंधम पुरुषम नमामि। सबसे प्रसिद्ध चोर है वो, और ऐसे प्रसिद्ध चोर है जिनको आज आज तक हम नमन करते हैं, और चोर भी कहते हैं माखन चोर, और उसको जस्ती भी है वो जो नाम है माखन चोर, हमें अगर कोई चोर बोलेगा क्या, लेकिन भगवान को माखन चोर कहते हैं और अच्छा सुंदर लगता है वो। जब भगवान आते हैं पंडित बन के विद्वा रस आस्वादन करने के लिए निमाई पंडित, तो सबसे प्रसिद्ध पंडित है वो निमाई पंडित, कोई भी उनके सामने खड़ा नहीं हो पाता था। तो वैसे भगवान जो करते हैं उसमें श्रेष्ठ है, चोरी भी करते हैं श्रेष्ठ है, तो ये है भगवान जो करेंगे श्रेष्ठ है। कोई लोग ऐसे कहते कि तुम्हारा भगवान रासलीला क्यों किया, ऐसे क्यों किया, नहीं भगवान ये दिखाया कि भगवान अगर ऐसे लीला करते हैं स्त्रियों के साथ तो उस समय भगवान श्रेष्ठ है। 16108 उनका महिषी रानियां थे और सहस्र अनंत कोटि गोपियों के साथ भगवान रासलीला कर रहे थे। तो इस जगत में लोग कहते हैं ना हम भोग करेंगे, तो करो ऐसे दिखाओ, कर सकते हैं क्या, तो इसलिए भगवान ऐसे किए क्योंकि वो दिखाना दिखाए हमें कि भगवान जो भी करे सर्वश्रेष्ठ है। बाहर के रूप में भगवान भोग कर रहे हैं इधर, हालांकि भगवान वो आत्माराम है आत्मरति है, लेकिन इस भोग में भी भगवान सर्वश्रेष्ठ है। हम अगर बुद्ध जी भोग भी करना चाहते हैं तो भी उनके साथ तुलना ही नहीं हो सकता है। तो इसलिए भगवान खुद स्वयं और असल रूप में वो भगवान असली रूप में वो भयभीत हो गए थे। सात अंक नेत्रम मुहु श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ, मुहु श्वास बार बार श्वास ले रहे थे भगवान, जब डर जाते हैं ना थक जाते हैं और भाग के आए ना भगवान, मैया यशोदा उनका पीछा कर रही थी, वो भी भाग रहे थे, मैया यशोदा भी भाग रही थी, बहुत देर बाद पकड़ लिए, तो भगवान बहुत थक गए थे और बहुत भयभीत भी हो गए थे, एकदम ब्रीदिंग्स कॉन्टिन्यूसली बार बार मुहूर् मुहू वो श्वास ले रहे थे भगवान। और क्या होगा हुआ, त्रिरेखा त्रितक ग्रैव दामोदर भक्ति बद्ध में सितक ग्रैव, उनका ग्रैव मतलब उनका माला, गले में उनका माला था, कंठी माला मोती का माला था भगवान का, तो माला के ऊपर उनका कंठ में एक तीन रेखा दाग आ गया, आंख आ गया भगवान का, कहा गया वो शंख के जैसे, शंख का ऊपर भाग में रहते हैं ना तीन दाग रहते हैं थ्री लाइंस, वैसे हो गया भगवान का कंठ में मुहु श्वास। और यही भगवान, ये देखिए और एक सुंदर बात है, कहा गया है कि कृष्ण कौन है, स्वयं भगवान, एते च्वांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, सबके स्वामी श्रोत है पुंसः सारे पुरुषावतार की भी के भी स्रोत है, जैसे पुरुषावतार महाविष्णु, गर्भदोक्षय विष्णु, क्षीरदोक्षय विष्णु। जो महाविष्णु का लीला कहा गया है, महाविष्णु क्या करते हैं, वो आराम से सो रहे हैं कर्णदक समुद्र में, और क्या कर रहे हैं, वो सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग। तो उनका जो एक सांस लेते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड का निर्माण हो जाते हैं, तब निकल के आते हैं, और जब सांस लेते हैं अंदर, फिर निकल अंदर चला जाते हैं। ये है भगवान का, वहां विष्णु का लीला। वो अशोक सिर्फ सांस ले रहे हैं, ब्रह्मांड का निर्माण हो रहे हैं और अंदर जा रहे, ध्वंस प्रलय भी हो रहा है, नाश भी हो रहा है। और अगर तो फिर सोच लिए, अगर महाविष्णु ने थोड़ा जोर से सांस लेना चालू कर दिया, क्या होगा, जोर से लेना चालू कर दिया, क्या हो जाएगा। और इधर इस महाविष्णु का जो स्रोत है कृष्ण स्वयं रूप, वो इधर जोर से सांस ले रहे हैं, मुहु श्वास कंप त्रिडेखांक कंठा, और तीन दाग भी आ गया ऐसे। सितक ग्रैव दामोदर भक्तिबद्धम, उनका जो ग्रैव मतलब उनका जब माला के ऊपर, यहाँ का कहते हैं ग्रीवा, कान को कहते ग्रीवा कहते, और ग्रीव में, ग्रीवा में ग्रैव, सितक ग्रैव दामोदर भक्ति। दामोदर मतलब क्या है, उदर मतलब हम समझते हैं उदर है हमारा, और दामोदर मतलब, दाम मतलब रस्सी कहा जाते हैं, रस्सी से बांधा गया है। तो सत्यव्रत मुनि जी कहते हैं कि हम उस दामोदर को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। पहले कहा था नमामि ईश्वरम, मतलब वो नमामि दामोदरम, उस दामोदर को प्रणाम करते हैं। अभी कौन, कोई कह सकते हैं कौन सा दामोदर को, दामोदर जिनका उदर रस्सी से बांधा हुआ है। अभी किसी का भी उधर रस्सी से बांधा हुआ हो सकते हैं। अगर कोई पुलिस चोर को पकड़ के लेके जाते हैं जेल खाना में, तो वे पकड़ के लेके जाएगा ना, तो क्या उसको भी नमन करोगे, तो कैसे बंधा हुआ है। तो तब देखे कहते हैं दामोदरम भक्ति बद्धम, ऐसे वैसे रस्सी से बांधा हुआ नहीं है, वो भक्ति का जो रस्सी है उससे बांधा हुआ है। त्वम भक्ति दामना सी मया निरुद्ध, हम ये कार्तिक का महीना चल रहा है दामोदर मंथ, और पहले था पुरुषोत्तम महीना, वो भी एक बहुत पवित्र महीना है। और पुरुषोत्तम महीने में हम गाते हैं जो चौराग्र गंध पुरुषाष्टक, उसका भी एक ही थीम है भक्ति बद्धम। इसमें कहा गया है भक्ति बद्धम, भक्ति से बांधा गया है भगवान को। उधर भी कहते हैं हम भगवान को भक्ति से बांधेंगे, बांध लेंगे। त्वम भक्ति दामनासी मया निरुद्ध, तो ये जो सुंदर कथा कहते हैं कि भक्ति का महात्म्य, भक्ति का सौंदर्य, भक्ति का माधुर्य, भक्ति से ही केवल हम भगवान को बांध सकते हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि बाकी सारे इतने सारे योगी मायावादी निर्विशेषवादी ये जो लोग हैं वो भगवान का समान बनना चाहते हैं। हम तपस्या करेंगे, हम साधन करेंगे, सिद्धि प्राप्त करेंगे और भगवान का समान हो जाएंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, भगवान का समान हो जाएंगे। तो प्रभुपाद बोले ये लोग मूर्ख है। हमारे पास ऐसा फॉर्मूला सिस्टम है, पंथा है, जिससे हम भगवान का समान नहीं, भगवान से भी बड़ा हो सकते हैं। कैसे, भगवान को बांध रहे हैं भक्त। भगवान खुद कहते हैं अहम भक्त्या पराधीना ह्यास तंत्रो इव द्विज साधु वीर ग्रस्त हृदय भक्तेर भक्त जन प्रिय, कि मैं मेरा भक्त का पराधीन हूं। इस संसार में सब स्वाधीन होना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंस मांगते हैं सब लोग, इंडिपेंडेंस चाहिए हमें, स्वाधीन होना चाहिए, हम किसी के अधीन नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन भगवान खुद कहते हैं कि मैं स्वयं स्वाधीन नहीं हूं, मैं पराधीन हूं। किसके पराधीन हूं, भक्त का अधीन हूं। अहम भक्त पराधीना, ये नवा स्कंद में कहते हैं भगवान दुर्वासा ऋषि को कि मैं मेरा भक्त का पराधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। ही असत असतंत्र ही असतंत्र इवद विजह, मैं अस्वतंत्र नहीं हूं, असतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं मेरा भक्त का पराधीन हूं। तो यह है दामोदर लीला का मधुरता। जैसे हम भक्त भगवान को भी बांध सकते हैं, तो यह है भक्ति योग का मधुरता। मैं यशोदा के बारे में कहा गया है नेमं विरिंचो नो भवो नश्विडप्यांग संश्रये प्रसादो ले विरे गोपी यत्तत् प्राप्त विमुक्तिदात। विरिंचो भवो, विरिंची मतलब ब्रह्मा जी, भव मतलब शिव जी, इनको भी ऐसे कृपा प्राप्त नहीं हुआ। बड़ा बड़ा जो ऋषि या योगिया है वो भाग रहे हैं भगवान के पीछे लेकिन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और इधर क्या कर रहे हैं, मैया यशोदा वो छड़ी लेकर उस भगवान के पीछे भाग रही है, पकड़ भी लिया उनको, बांध भी लिया। तो ये सो हम सुनते हैं कथा दामोदर लीला के बारे में, आगे भी सुनेंगे हम कि कैसे जब बांध रही थी मैया यशोदा तो हर बार रस्सी कितना उंगली कम पड़ रही थी, दो उंगली। तो दो उंगली का मतलब क्या है कहा गया, मतलब एक है हमारा प्रयास और दूसरी है भगवान का कृपा। ये दोनों चीज चाहिए हमें, प्रयास भी चाहिए भगवान की कृपा भी चाहिए, दोनों चाहिए। अभी दो उंगली में क्या दोनों उंगली समान है या छोटा बड़ा है, तो कहते हैं इसमें भी छोटा बड़ा है। तो हमारा जो प्रयास है वो कम है और भगवान की कृपा ज्यादा महत्वपूर्ण है। इधर ऐसे भी कोई कोई भक्त ऐसे कहते हैं कि हमारा जो प्रयास है वो सिर्फ 1% और भगवान का कृपा 99% रहते हैं, तब जाके मिलकर 100% होते हैं। तो अभी कोई कह सकते हैं ठीक है चलो हमें परीक्षा में 100 मार्क्स नहीं चाहिए, 99 से खुश हूं मैं, तो भगवान उनका 99% दे दे हमें, 99% दे दे हमें, हम हमारा जो 1% नहीं देंगे, हम बैठ जाते हैं ऐसे आराम से, भगवान आके कृपा करेंगे हो जाएगा, वो 1% क्या जरूरत है। लेकिन कहा गया नहीं, वो 1% पहले है उसके बाद 99% आएगा। वो जो 1% है वो चाबी है, की है, वो 99% को खोलने के लिए चाबी है। हर जगह में कहा जाता है, जैसे भगवत गीता में भी सुनते हैं हम, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम् त्वां सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सुनते हैं ये श्लोक बार बार। कहा क्या कहा गया है इस श्लोक में, पहले लाइन में कहा गया है भक्त का कर्तव्य क्या है और दूसरी लाइन में कहा गया है भगवान का कर्तव्य क्या है। भक्त का काम क्या है, भगवान का काम क्या है। पहले लाइन में क्या कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, के तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरा शरण लो, एकमात्र रूप से मेरा शरण लो। पहली लाइन मतलब भक्त का कर्तव्य क्या है, काम क्या है, पहला शर्त दिया गया है, पहले तुम ये करो उसके बाद दूसरी लाइन आएगा, ठीक है ना, तब जाके मैं क्या करूंगा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि स्वामी माशु, तब जाके मैं तुम्हें उद्धार करूंगा सभी पाप से, शर्त दिया गया है। तो पहले भक्त को अपना काम करना पड़ेगा, उसके बाद भगवान उनका काम करेंगे। तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञाने न तत्वदर्शिनः। पहले दो लाइन में क्या कहा, क्या पहले लाइन में क्या कहा गया है, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, ये भगवान का, ये भक्त का काम है, शिष्य का कर्तव्य है गुरुदेव के पास जाके प्रणिपात परिप्रश्न सेवा करना, प्रश्न पूछना। तब जाके गुरुदेव क्या करेंगे, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञान पास बुलाएंगे और उसको शिष्य को तत्व ज्ञान देंगे। तो पहले हमें हमारा कर्तव्य करना चाहिए, उसके बाद भगवान करेंगे उनका कर्तव्य। तो कई अभी कह सकते हैं ठीक है भगवान के, भगवान तो प्रसिद्ध है, वो चौड़ा गृहगण्य है और उनका हाव भाव थोड़ा ठीक नहीं लगता है, क्योंकि छल भी करते हैं ना भगवान कृष्णा। तो अगर इस जगत में होते हैं कि लोग मतलब वो प्रतिज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो भगवान की प्रतिज्ञा की है इधर, तो भगवान बोले अब कि तुम तुम्हारा कर्तव्य करो, मेरे पास शरण लो, मैं तुम्हें उद्धार करूंगा। तो अगर ऐसा हो जाए कि हम भगवान का भक्ति करें सब कुछ छोड़ छाड़ कर, अगर वो उनका खुद का प्रतिज्ञा पालन ना करे तो क्या होगा, वो हमें चीट करे धोखा दे तो क्या होगा। तो कहते नहीं, भगवान अच्युत है। अच्युत का मतलब क्या है, जो अच्युत नहीं होते उनका धर्म से, उनकी प्रतिज्ञा से, तो भगवान करेंगे ही उनका उनका कर्तव्य अच्युत है, इसलिए हमें हमारा कर्तव्य पालन करना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं दो मार्ग, मतलब दो धारणा के बारे में कहा जाता है, साधन सिद्धि और कृपा सिद्धि, प्रयास और कृपा। हमें साधना करना चाहिए तब भगवान भी कृपा करेंगे, कृपा सिद्धि। तो कई वैष्णव संप्रदाय जो है, जैसे खास करके ऐसे कहा गया कि दो भाग है, दो सोच है, दो चिंत विचार है। कई भक्त कहते हैं कि नहीं, हमें साधन के ऊपर ज्यादा जोर देना चाहिए, साधन सिद्धि यही है। और दूसरी जो श्रेणी वो कहते नहीं, कृपा ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दो उदाहरण देते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि मार्जार न्याय और मरकट न्याय। मार्जार मतलब बिल्ली और मरकट मतलब बंदर है। तो बंदर कैसे जाते हैं, बंदर जो कैसे जाती है वो उसका बच्ची को लेकर हम देखें, तो जो बच्ची है वो माँ को पकड़ के रखते हैं ऐसे पीठ में या फिर पेट में पकड़ के रखते हैं, और वो जो बंदर है वो एक डाल से और एक पैर में, एक पैर से और एक पैर में छलांग लगाती है जाते हैं। तो इधर किसको कष्ट करना पड़ रहा है, वो बच्ची को पकड़ के रखो कष्ट के, अगर छोड़ दिया गया। और बिल्ली कैसे करते हैं, वो अपना बच्ची को मुंह से लेके जाती है। तो इधर किसको कष्ट करना पड़ रहा है, माँ को। तो कोई कहते हैं ऐसे हमें बिल्ली का जैसे मर्जारण न्याय के भगवान हमें पकड़ के लेके जाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। और कोई कहते नहीं, दूसरी है जो बंदर के मरकटन न्याय, हमें भगवान को पकड़ के रखना चाहिए, साधन करना चाहिए। तो लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं हमारे संप्रदाय में, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में का सिद्धांत क्या है, वो दोनों जोड़ दिया गया है। तो वो और एक कथा कहते हैं कि एक बार एक कुएं में एक लोग गिर गए, एक आदमी गिर गया अंदर। तो ऊपर से और एक आदमी आके क्या किया, एक रस्सी फेंका नीचे, तो नीचे का आदमी और रस्सी पकड़ के रखा, ऊपर का वो खींच रहा था उसको उठा लिया। तो यह इस कहानी में कौन कष्ट कर रहा है, दोनों। तो वैसे कहते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारा संप्रदाय में जो सिद्धांत क्या है, नहीं हमें भी साधना करना चाहिए, वो रस्सी पकड़ के रखना चाहिए और भगवान या गुरु वो ऊपर से खींचेंगे। हमें भी साधना करना चाहिए, गुरु भी कृपा करेंगे, दोनों एक साथ में होगा, वरना नहीं होगा। तो इसलिए ये भक्ति है बहुत आसान तरीका है, भक्ति बद्धम भक्ति। हाँ, प्रभुपाद कहते हैं भक्ति सरल है लेकिन सहज नहीं, भक्ति सिंपल बट नॉट इजी, पहला स्कंद में कहते हैं 1.1.3 तात्पर्य प्रभुपाद कहते हैं इस सिंपल बट नॉट इजी। क्यों, सरल तो कहा गया है, जैसे मैया यशोदा और बाकी सारे भक्त भी भगवान को बांध लिए, हम भी बांध सकते हैं, सरल तरीका है लेकिन उतना इजी नहीं है। जैसे मान लो कि इधर तो रास्ता मुझे इतना पता नहीं है, मायापुर में हम रहते, तो मायापुर में क्या कहा कि वो जो घाट है हुलोल घाट, घाट से जो मेन मंदिर, घाट में अगर कोई पूछे आपको कि इस्कॉन मंदिर किस तरफ है, क्या बोलेंगे आप, सीधा जाते रहिए, एकदम सीधा मार्ग है भक्ति सिद्धांत मार्ग, सीधा जाइए इस्कॉन आ जाएगा सामने, सरल तरीका है। ऐसे नहीं, एक डिवोटी मुझे बोल रहा था एड्रेस, पहले आप जाइए डाय में जाइए, उसके बाद बाएं जाइए, उसके बाद और डाय जाइए, उसके बाद ठीक है प्रभु जी हरे कृष्ण, ऐसे नहीं, भक्ति का सीधा एकदम सरल दिख रहा है, जाओ, लेकिन सहज नहीं है। क्यों, दुर्घटना एक्सीडेंट हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं, क्योंकि हमारा जो श्रद्धा नहीं है, पूर्ण श्रद्धा नहीं है। कभी कभी हम सोचते हैं ऐसे, भक्ति तो करते हैं लेकिन भक्ति के साथ बाकी समस्त चीज जो है उसका भी चाहिए हमें। एक भक्त ऐसे कह रहा था कि प्रभु जी जो भी बोलिए आप, भक्ति करने के लिए थोड़ा तो पैसा चाहिए ना, पैसा के छोड़ के हम कैसे भक्ति कर सकते हैं, भौतिक धन चाहिए, धन के अलावा कैसे भक्ति कर सकते हैं हम। लेकिन अगर हम सिद्धांत चर्चा करेंगे तो हाँ, भक्ति करने के लिए और कुछ नहीं चाहिए, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, सभी उपाधि से मुक्त होना पड़ेगा। बल्कि वो जो धन है ये भक्ति में बाधा है, जन्म ऐश्वर्य सुतर श्रीवीर एधमान मदोपमान नैवाह्यर्थ विधातुम वैतम किंचन अगोचर, ये बाधा है भक्ति में, क्योंकि ये हमें अहंकारी घमंडी कर देगा। धन है, विद्या है, बुद्धि है, कभी कभी हम देखते हैं ऐसे भी सोचते हैं भक्त समाज में, ओके ये प्रभु जी आए, उनका बहुत बड़ा डिग्री है, पीएचडी है, या फिर उनका इंजीनियर डॉक्टर है, इतना बड़ा भक्त है, भक्ति भी कर रहे हैं, और ये भक्त ओ ठीक है कोई डिग्री नहीं, या फिर ये भक्त इतना पैसा है फिर मंदिर में दान कर रहे हैं, ये भक्त कुछ पैसा ही नहीं है, हम ऐसे सोच लेते हैं कभी कभी, कभी बोलते हैं कभी नहीं भी बोलते हैं, बाहर रूप या फिर अंदर में सोचते हैं ऐसे। लेकिन भक्ति का जो विचार है ये अगर हम समझे, भक्ति रसामृत सिंधु परे हम, भक्ति योग का विज्ञान पहले पहले पेज में कहा गया, प्रभुपाद ने कहे भक्ति योग का विज्ञान क्या कहा है इसमें, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनाम, सब कुछ छोड़ के भगवान का आनुकूल्येन कृष्णानुशूलनम भक्ति उत्तम, ये उत्तम भक्ति है। इसलिए अगर हम सिद्धांत का चर्चा करेंगे तो भक्ति करने के लिए कुछ नहीं चाहिए। कभी कभी लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो हम कैसे भक्ति करें, आपका इस्कॉन मंदिर में जाते हैं अगरबत्ती का दाम 50 रुपया, ये है वो, ऐसे ऐसे पूछते हैं प्रश्न कैसे भक्ति करें, तो क्या कह सकते हैं, भक्ति के लिए पैसा नहीं है हमारे पास, हम गरीब है, क्या हम भी भक्ति कर सकते हैं? हाँ सब कर सकते, जरूरत नहीं है आप अगरबत्ती घूम दिखाए भगवान के, अगर पैसा नहीं हो तो, अगर आपका सामर्थ्य है तो अगरबत्ती दिखाई आके 50 रुपये से खरीद कीजिए, दिखाई अगरबत्ती, अगर नहीं सामर्थ्य है तो फिर ठीक है भगवान को प्रार्थना कीजिए, मन से भगवान का भक्ति कीजिए, हरे नाम जप कीजिए, यही मूल सिद्धांत सार है। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्रद्धा श्रीमूर्ति सेवन, 5 चीज है। 64 अंग के बारे में कहे महाप्रभु रूप गोस्वामी भी कहे, उसके बाद उसको छोटा करके क्या किया, स्क्वीज करके 5 ही चीज, बस ये 5 करो हो जाएगा सब। सकल साधन श्रेष्ठ यही पंच अंग कृष्ण प्रेम जन्मे यही 5 अल्प संग, जितना साधन है सबसे श्रेष्ठ ये 5 चीज, ये करो कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। और अब कहीं कभी कोई कह सकते ठीक है ये 5 भी नहीं कर सकते हम, तो कहे क्या, अगर एक भी करें यही 5 मध्य एक संग जदि हो सुबुद्धि जनार हो कृष्ण प्रेम उदय, अगर इस 5 में किसी एक का भी संग कर लिए हम अच्छा से कृष्ण प्रेम हो सकते हैं, अच्छा आसानी से सुबुद्धि जनार हो कृष्ण प्रेम उदय। भक्ति का सिद्धांत यह सरल है कि दिस इज कॉल्ड भक्ति, भी कहते हैं कि ये इसे कहते हैं साक्षात भक्ति। बाकी काम भी करते हैं ना हम भक्ति में, वो भक्ति में फेवरेबल है, वो अनुकूल है, लेकिन साक्षात भक्ति का मतलब ये है, या फिर नवविध नवधा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ये साक्षात भक्ति। जैसे भगवद गीता में कहते हैं भगवान 12वें अध्याय में चैप्टर 12 भक्ति योग में 8, 9, 10, 11 चार श्लोक में भगवान कहते हैं, पहले क्या कहते हैं कि मय्येव मन आधत्स्य, तुम तुम्हारा मन मेरा चरण कमल में निबद्ध स्थित करो, स्थिर करो मन को, तुम्हारा मन चाहिए, पहले मन दे दो मुझे, भगवान 8वें श्लोक में ये कहते हैं। 9वें श्लोक में कहते हैं अगर तुम मन नहीं दे सकते हो पूरी तरह तो फिर क्या करो, अभ्यास योगेन युक्ते, अभ्यास करो, मन जाएगा लेके आओ, जाएगा लेके आओ भक्ति में, अभ्यास करो। और 10वें श्लोक में क्या कहते हैं कि ठीक है अगर अभ्यास भी नहीं कर सकते तो फिर अनुकूल कर्म करो। और 11वें श्लोक में कहते हैं ठीक है तुम वेद में वेद विहित कर्म करो, शास्त्र विहित कर्म करो। तो जो 9वें श्लोक में कहते हैं प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं जी अनुकूल कर्म मतलब क्या है, हम पैसा कमाते हैं भगवान के सेवा में देते हैं, ये अनुकूल कर्म हुआ। तो लेकिन साक्षात रूप में जो कहा गया है भक्ति, वो पहला वाला फर्स्ट स्टेज, मन दे दो मुझे। तो मन से, मन का काम क्या है, मन का काम है चिंतन करना, थिंकिंग फीलिंग विलिंग, 3 चीज बताते हैं प्रभुपाद, थिंकिंग फीलिंग विलिंग, चिंतन करना, अनुभव करना और इच्छा करना, ये मन का कार्य है। तो ये जो 3 कार्य मन का, ये मेरे बारे में करो, मेरे संपर्क में करो। तो कैसे कर सकते हैं हम, ये 5 चीज श्रवणम कीर्तनम, ये जो भक्ति का अंग है, साधु संग करना, भक्त का संग करना, संग में आके क्या करना, नाम कीर्तन हरि नाम जप कीर्तन करना, प्रचार करना, भागवत श्रवण करना, भागवत अध्ययन करना भक्त संग में आकर, ये 3 चीज मथुरावास धाम में वास वृंदावन धाम है, और श्री विग्रह का अर्चन करना। तो मंदिर में जाते हैं हम विग्रह का दर्शन लेते हैं, वही विग्रह का वो भी सेवा होते हैं भगवान का, आरती में भाग लेते वो भी सेवा होते हैं भगवान का, ये है सरल सिद्धांत। कभी प्रश्न पूछते हैं हम क्लास में जो प्रभु जी हमारा अनर्थ से हम कैसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं, कैसे हमारा मन शांत होगा, अलग अलग प्रश्न पूछते हैं ना, सभी प्रश्नों का उत्तर यही है कि ये जो 5 चीज है पंचांग भक्ति कहा गया, और ज्यादा से ज्यादा मतलब रूप में करो। मैया यशोदा जैसे उनका भक्त से कृष्ण को बांध लिए थे, वैसे हम भी बांध सकते हैं भक्ति से, कि किस तरह का भक्ति उसे कहते हैं, हम जैसे कर रहे हैं या फिर जो भी जैसे करे, मतलब अगर ऐसे बांध चाहते हैं हम भगवान को तो वो कहा जाते हैं तीव्र भक्ति, तीव्रेन भक्ति योगेन अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार धी तीव्र न भक्ति योग है, तीव्र रूप से भक्ति करना चाहिए। जैसे कभी कभी नहाने जाते हैं हम, जो बाथरूम में टंकी में पानी नहीं होते पूरा, है ना, तो नल जब खोलते हैं थोड़ा थोड़ा पानी आता है बूंद करके, एक आते हैं एक बूंद, दो सेकंड बाद और एक बूंद, तो क्या कैसा लगता है हमें, गुस्सा जाता है, अरे क्या है, जाना है हमें मंगल आरती के लिए, फिर इधर भगवान मंदिर में जाना है, पानी नहीं आ रहे, क्या करें अभी, थोड़ा थोड़ा आते जस्ट, उसमें नहाना नहीं होगा हमारा। लेकिन अगर टंकी फुल हो तो फिर एकदम तीव्र वेग में आते हैं पानी, आ रहा था जस्ट नीचे जाके खड़ा हो गया, बस हो गया। तो गंगा का जो स्रोत है तीव्र, या फिर जो वाटरफॉल आते हैं गिरती है, तो इसे कहा जाता है तीव्र भक्ति, तीव्र न भक्ति योग है ना। तो तीव्र भक्ति का मतलब क्या है, या फिर भक्ति में प्रगति मतलब क्या है, दो चीज हम कह सकते हैं, एक है क्वालिटी, एक है क्वांटिटी। क्वालिटी का मतलब क्या है, उसका जो गुणगत मान है, वो उसका जो स्टैंडर्ड है भक्ति का, जो क्वालिटी का मतलब गुण बढ़ाना है, जप करना क्वालिटी अच्छी जप करना चाहिए, और ज्यादा अच्छा ध्यान से जप करना चाहिए क्वालिटी। और एक है क्वांटिटी, उसका परिमाण बढ़ाना, संख्या बढ़ाना। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम कहते नहीं क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी चाहिए, लेकिन क्वांटिटी के बारे में बात नहीं करते। तो इसलिए कहते जब अच्छा जब कैसे करें, कहा गया प्रभुपाद कहे चैंट मोर, हाउ टू चैंट बेटर, चैंट मोर। तो क्वालिटी बढ़ाना चाहिए हमें, लेकिन वो एक छलांग से नहीं बढ़ा सकते, वो हमारे हाथ में अभी तक नहीं है, लेकिन क्वांटिटी बढ़ाने का हम प्रयास कर सकते हैं, संख्या बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो पांच चीज है साधु संघ नाम कीर्तन कहा गया है, इसमें हम कितना समय दे रहे हैं, साक्षात प्रत्यक्ष रूप में कितना समय दे रहे हैं, इसमें दिन में 24 घंटे में कितना समय हम साक्षात भक्ति में दे रहे हैं, और कितना समय बाकी काम कार्य में दे रहे हैं। तो भक्ति का तो तीन प्रकार कहा गया है आचार्यों ने, पहले गुणीभूता भक्ति, प्रधानीभूता भक्ति, और उसके ऊपर है केवला भक्ति। केवला भक्ति मतलब क्या है, पूरा एकदम पूरा के पूरा साफ, 100% प्योर शुद्ध भक्ति कहा गया। जैसे मान लो इस ग्लास में, ग्लास में दूध है, तभी कलयुग है, दूध में दूध मतलब पूरा दूध नहीं मिलेगा हमें, पानी मिलेगा, शैंपू मिलेगा, और क्या क्या प्लास्टिक मिलेगा। तो मान लीजिए दूध है और पानी है, इसमें कितना प्रतिशत दूध है, कितना प्रतिशत पानी है इसमें। अगर 70% दूध है, 30% पानी है, तो क्या कहेंगे इस ग्लास को, हम कहते हैं जल मिश्र दूध, संस्कृत में कहते हैं, अगर कहना चाहते तो जल मिश्र दूध, मतलब जल का मिश्रण है लेकिन दूध ज्यादा है। और अगर उल्टा हो, 70% पानी हो और 30% दूध हो, तो क्या कहेंगे हम, दूध मिश्र जल, जो कम है उसका मिश्रण है और जो ज्यादा है वो ही मूल चीज है, जल मिश्र दूध या फिर दूध मिश्र जल, उल्टा। तो अगर इस भक्ति में भी ऐसे, हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन भक्ति के साथ साथ हम कर्म ज्ञान योग ये भी कर रहे हैं, भौतिक कार्य भी कर रहे हैं, संसार निर्वाह करना चाहते वो भी कर रहे हैं, पैसा कमाना है ठीक है, जो गृहस्थ है उनके लिए सामाजिक कार्य भी करना चाहिए, घर का भी काम करना चाहिए, लेकिन प्रश्न यह है कि हम कैसे कर रहे हैं, कितना प्रतिशत भक्ति कर रहे हैं और कितना प्रतिशत बाकी काम कर रहे हैं। अगर 70% भक्ति करें और बाकी प्रतिशत 30% कर्म ज्ञान करें, तो उसको क्या कहा जाता है, कर्म मिश्र भक्ति। गीता में देखते हैं हम प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में कर्म मिश्र भक्ति। और अगर उल्टा हो, 30% भक्ति, ये जो प्रतिशत कह रहे हैं हम परसेंटेज, जस्ट फॉर एग्जांपल, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ज्यादा और कम समझने के लिए कह रहे हैं हम, 30% भक्ति करें, बाकी हम बाहर का काम करें, तो फिर क्या हो गया, ये भक्ति मिश्र कर्म उल्टा। तो जो भक्ति मिश्र कर्म, मतलब भक्ति कम है, कर्म ज्यादा है, ज्ञान ज्यादा है, उसे कहा जाता है गुणीभूता भक्ति, मतलब थर्ड तीसरी स्तर का। और जिसमें भक्ति ज्यादा, कर्म ज्ञान ये सब बाकी काम कम है, उसे कहा जाता है प्रधानीभूता भक्ति। और जिसमें सिर्फ भक्ति, 100% भक्ति, नो मिक्सचर, कोई मिलावट नहीं है, उसे कहा जाता है शुद्ध भक्ति, केवला भक्ति। तो जो ब्रह्मचारी सन्यासी है, उन्हें तो इस शुद्ध भक्ति का अभ्यास करना चाहिए पहले से ही, आशा करते हैं, एक्सपेक्टेड। जो गृह में है, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कहना है, जो गृह में है, गृहस्थ में है, वो कहते थे कि वो कम से कम जो प्रधानीभूता, मतलब दूसरे स्तर में रहे, मतलब वो भक्ति में ज्यादा ध्यान दे, और बाकी जो काम है कर्म ज्ञान या फिर जो पैसा कमाना फिर बाकी घर देखना घर बसाना ये सब जितना जरूरत हो उतना ही करें. टू थिंग्स, वन इज दो भक्त है. एक भक्त स्पिरिचुअली हाई एम्बिशियस मेटेरियली सेटिस्फाइड और एक भक्त मेटेरियली हाई एम्बिशियस स्पिरिचुअल सेटिस्फाइड. मतलब क्या है, जो स्पिरिचुअली हाई एम्बिशियस आध्यात्मिक भक्ति जीवन में वो उच्चाकांक्षी है, मुझे आगे बढ़ना है ऊपर जाना है भक्ति में श्रद्धा साधु संग भजन के ऊपर जाना है अनंत से मुक्त होना है तो शरंग शरणागति शरणागति का अंग प्राप्त करना है मुझे शुद्ध होना है भगवान के प्रति सरेंडर्ड होना है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है ऊपर जाना है. सेटिस्फाइड नहीं हूं मैं संतुष्ट नहीं हूं जैसे भक्ति कर रहा हूं मैं. भक्ति जीवन में वो उच्चाकांक्षी है लेकिन भौतिक जीवन में संतुष्ट हूं. ठीक है जो मिला चल रहा है घर बार सब चल रहा है अच्छा चलो और ज्यादा बढ़ाने का उतना जरूरत है नहीं चल रहा है अच्छा से चलो. ये एक भक्त है. और दूसरी भक्त है क्या है, नहीं मैं भौतिक जीवन में मैं उच्चाकांक्षी हूं मुझे वो घर है उसको और ज्यादा बड़ा करना है और ज्यादा मुझे गाड़ी खरीदना है बैंक में इतना पैसा चाहिए या फिर नौकरी में प्रमोशन चाहिए व्यापार को इतना बढ़ाना है सम्मान चाहिए समाज में. भौतिक जीवन में वो ज्यादा उच्चाकांक्षी हाई एम्बिशियस है. और भक्ति में ठीक कर ही रहा हूं ना सेटिस्फाइड भक्ति में जो कर रहा हूं अच्छा बहुत ही कर रहा हूं भक्ति दीक्षा हुआ फिर सोलह मतलब बहुत हो गया बहुत प्रगति कर लिया हम थोड़ा उतना तेज से भी नहीं करना चाहिए. बंगाली में एक कहावत कहते हैं अति भक्ति चोर लक्षण प्रभुवादी कहते हैं ये ज्यादा भक्ति करेंगे वो चोर का लक्षण है. तो कभी कभी ये भी कहते कई भक्तों उतना भक्ति नहीं करना चाहिए ठीक है आराम से करो लेकिन हमें क्या कौन सा किस तरह का भक्त को फॉलो करना चाहिए पहले वाला जो भक्ति जीवन में उच्चाकांक्षी है उसमें आगे बढ़ना है भक्ति में और भौतिक जीवन में ठीक है संतुष्ट हूं. तो ये है भक्ति का सिद्धांत. और ऐसा भक्ति में हम भगवान को और तीव्र रूप में कितना समय दे रहे हैं भक्ति में समय बढ़ाना चाहिए धीरे धीरे भक्ति में धीरे धीरे भक्ति में समय बढ़ाना चाहिए बढ़ाते बढ़ाते वो 100% टाइम इन भक्ति और 0% इन मेटेरियल. जैसे हमें गोस्वामी थे वो तो एकदम ऊपर का स्तर है लेकिन जितना कम कर सके हम ये है. और इस भक्ति से हम प्राप्त कर सकते हैं तो हम एक अच्छा एक कथा बता के भक्ति के बारे में बोल रहे हैं खत्म करते हैं. रूप गोस्वामी पाद का बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं उनका पद्यावली में कि भगवान को कैसे संतुष्ट किया जा सकते हैं. वेद वेदस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जाया किं युनाम रूपमधिकं किं तत्सुदां नोधन वंशो को विदुरस्य यादववतेर् उग्रस्य किं पौरुषं भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैर् भक्ति प्रिय माधव. भगवान को कैसे संतुष्ट किया जा सकता है. कोई कह सकते हैं कि नहीं हमें अच्छा आचरणशील होना चाहिए अच्छा से आचरण करना चाहिए सदाचार जानना चाहिए मानना चाहिए तब जाके कहते हैं कि व्याद वो जो मृगाड़ी था धर्म वेद उसका क्या आचरण था. वो तो पशुओं को आधा मर रहा था क्या आचरण था भगवान को प्राप्त कर लिया. तो आचरण से नहीं चलेगा तो भी ठीक है. हमारा उम्र अच्छा होना चाहिए एक्सपीरियंस अनुभव अच्छा होना चाहिए तब भगवान को प्राप्त कर सकते हैं. जब ज्यादा उम्र बढ़ेगा तब भगवान को प्राप्त करेंगे छोटी उम्र प्राप्त नहीं कर सकते. तब क्या कहते हैं व्याधस्य आचरणम ध्रुवस्य च वयो. ध्रुव का कितना उम्र था उसने प्राप्त कर लिया ठीक है. कम से कम विद्या तो चाहिए ना ज्ञान चाहिए ज्ञान के बिना भगवान कैसे प्राप्त करेंगे. तो तब कहते हैं विद्या गजेन्द्रस्य का. गजेन्द्र का क्या विद्या था वो हाथी था. कौन सा IIT में या फिर MIT में पढ़ के आया था वो विद्या गजेन्द्रस्य का. तब कहते ठीक है अच्छा रूप होना चाहिए देखने में अच्छा होना चाहिए ऐसे कुरूप लेके कैसे भगवान के सामने खड़ा होंगे हम. अच्छे रूप होना चाहिए देखने में अच्छा होना चाहिए. तब बोलते हैं कुब्जा या किम युनाम रूपम. कुब्जा का कैसा रूप था. तब कहते ठीक है थोड़ा धन तो होना चाहिए ना थोड़ा तो धन होना चाहिए कैसे भगवान के सामने जाएंगे. तब कहते हैं किम तत् सुदाम्नो धन. सुदामा कितना धन था. तो कहते ठीक है कम से कम अच्छा वंश में जन्म लेना चाहिए जन्म अच्छा होना चाहिए. तब कहते हैं वंशो को विदुरस्य. विदुर का कौन सा वंश था जन्म था वंशो को विदुरस्य यादवपते, तो कहते ठीक है पौरुष क्षमता होना चाहिए, शौर्य होना चाहिए, वीर्य होना चाहिए, तब कहते हैं वंश को विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किम पौरुषम, उग्रस्य इनका कितना सामर्थ्य था, शक्ति था। तो इसलिए सिद्धांत क्या है, भक्त्या तुष्यति केवलम नच गुणेर भक्ति प्रिय माधव, केवल भक्ति से ही हम माधव का संतुष्ट कर सकते हैं, तुष्ट कर सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं चलेगा। बाकी हो सकते हैं ठीक है आए तो लगाओ भगवान का सेवा में, जैसे आग है, आग तो आग ही है ना, लेकिन अगर कोई अच्छा जो रसोई करते हैं तो फिर आग को लेकर पका के भगवान को भोग दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर मतलब ध्यान भटक जाए तो फिर वो जला देगा। इसलिए जो जड़ विद्या बुद्धि जन्म ऐश्वर्य ये सब आग जैसे है, हाई एजुकेशन वेल्थ आग जैसे है, किसी के पास है तो सावधान रहना चाहिए, सावधानी से भगवान का सेवा में लगाए वरना वो जला देगा। और अगर हम ऐसे सावधानी से भक्ति करें, तीव्र भक्ति करें, तो भक्ति बद्धम भगवान भक्ति से बांध जाते हैं। श्री दामोदर भगवान की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, कृष्ण बलराम की, गौणिते भगवान की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।